हरे कृष्णा। सब मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथार्थ तो अध्याय 18 से हम चर्चा करेंगे। दो श्लोकास जो जनरली गीता मैराथन में यूज होते हैं, श्लोक संख्या 68 और 69। एहिदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यति संशयः। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। मेरे पीछे अनुवाद दोहराइए, जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। अनुवाद इस प्रकार से है, सामान्यतः ये उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों तात्पर्य सामान्यतः ये उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच भगवद गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है वे न तो कृष्ण को समझेंगे नहीं भगवद गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवद गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें मनमाने ढंग से भगवद गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवद गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। ये एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है, ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। अगला श्लोक 69। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भविता, न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। अनुवाद, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। मेरे पीछे दोहराइए, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता को हम नियमित रूप से श्रवण करते हैं और जैसे इस भगवद गीता का टाइटल ही है भगवद गीता यथारूप, अपना रूप नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे थे तो एक अमेरिकन स्त्री उनके पास आई और उसने कहा, स्वामी जी मैं भगवद गीता पढ़ना चाहती हूं। वैसे शास्त्र कहते वो व्यक्ति बहुत फॉर्चुनेट है, भाग्यवान है जिसको कम से कम ये डिजायर होती है कि भगवद गीता पढ़नी है। इसलिए भगवान कम से कम दिया, ऐसा व्यक्ति संसार में मिलना भी बहुत दुर्लभ है जिसके अंदर ये इच्छा जागृत हो गई। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो तो वहां एक ब्राह्मण निवास कर रहे थे जिनका नाम था प्रद्युम्न मिश्रा। तो ये जो प्रद्युम्न मिश्रा चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि मेरी तो इच्छा हो रही है बहुत आजकल, क्या इच्छा हो रही है? श्रवण करने की, कृष्ण कथा को सुनने की इच्छा मेरे अंदर हो रही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे जिस व्यक्ति के अंदर कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा हो वो व्यक्ति इस तीनों लोकों में सर्वाधिक भाग्यवान है। अभी हम सब भी अपने जीवन में भाग्यवान बनना चाहते हैं। हमारा भाग्य मीन्स क्या सोचते हैं? बड़े कुल में जन्म हो, बहुत धन हमारे पास हो, नाम सारे फरीदाबाद में फैल जाए और सुंदरता हो, बल हो। तो हम सोचते हैं कि इस भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त होना ही सबसे भाग्यवान वस्तु है। लेकिन भगवान के दृष्टि में ये नहीं है, हमारे दृष्टि में हो सकता है क्योंकि हमारे दृष्टि भौतिक चीजों से भरी हुई है। तो जो भगवान के भक्त है और भगवान है उनके दृष्टि से इस संसार को देखने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए तो कुंती महारानी ने कहा, जब कुंती महारानी ने देखा कि कृष्ण अभी महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर को छोड़ के जा रहे हैं, भगवान रथ के ऊपर सवार हो गए हैं, कि कुंती ऐसी स्त्री है भागवतम में सबसे पहले किसी ने भगवान से सुंदर प्रार्थनाएं की हैं, तो किसकी है? कुंती की है। और ऐसे ऐसे वचन है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान की स्तुति नहीं कर सकते, ऐसे एक सर्वसाधारण स्त्री ने क्या किया है? भगवान का गुणगान किया है। तो वो कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी एदमान मद कुमान। हे कृष्णा, इस संसार में लोग तो यही अपना सबसे बड़ा भाग्य समझते हैं कि अच्छा जन्म हो, बहुत धन हो, बहुत नॉलेज हो और सुंदरता हो। लेकिन वो कहती है कि जिस व्यक्ति के पास ये चार चीजें आ जाती है वो व्यक्ति योग्य नहीं है आपकी भगवत भक्ति करने में। ये चीजें जब बढ़ती है व्यक्ति के जीवन में तो उसके साथ साथ एद मान मदह कुमान, मद मीन्स अहंकार, ये जब चीजें आती हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होता है और हम बात करते तो भी कैसे अकड़ के बात करने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस कारण से कोई व्यक्ति भगवान आपकी शरण नहीं ग्रहण कर सकता। तो भगवान क्योंकि ये चीजें हमें कठोर बनाती हैं, अहंकार को बढ़ाती है, जिसके पास अहंकार है वो इजीली झुकता नहीं है। भगवान की कृपा चाहिए है तो क्या सीखना होगा? हमें झुकने के लिए सीखना होगा। जितना अधिक हम झुकेंगे कृष्ण के सामने उतने ही अधिक भगवान हमारे एक एक प्रणाम को काउंट करते हैं। क्या करते हैं? काउंट करते हैं, एक एक डिवोशनल एक्टिविटीज, हम किस प्रकार से सर्व कर रहे हैं, कैसे प्रणाम, कितनी बार प्रणाम कर रहे हैं हम भगवान को। तो भगवान सेंसिटिव है बहुत, भगवान एक एक चीज को काउंट करते हैं, देखते हैं और उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी कहती है कि व्यक्ति के अंदर ये भौतिक जो उपलब्धियां हैं वो तो केवल अहंकार ही ला देती है, और जब अहंकार का गुब्बारा जब फूलता है तो व्यक्ति सरलता से शरण ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन केवल बना है भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए। जब हम भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते अपने जीवन में तो हम स्वाभाविक रूप से माया की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग किसी ना किसी की शरण ग्रहण किए बिना जीवित नहीं रह सकती। हम किसी ना किसी के शेल्टर में हैं, शरण में हैं। तो इसी कारण से
वो व्यक्ति वास्तव में भाग्यवान है जिसके अंदर ये इच्छा जागृत हो जाए कि हाँ मुझे क्या पढ़ना है, भगवत गीता को पढ़ना है, कृष्ण के बारे में सुनना है। इसलिए तो प्रहलाद महाराज जब स्कूल से वापस आए तो उनके पिता ने पूछा, बेटा बताओ, हिरण्यकश्यपु ने पूछा, क्या सबसे अच्छी वस्तु सीखी है अपने स्कूल में? तो प्रहलाद छोटे से 5 साल के बच्चे हैं, उन्होंने कहा मैंने बहुत अमेजिंग चीज सीखी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णुर, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दाशम, सख्यम आत्मनिवेदनम। मैंने स्कूल में जाकर, अभी तो स्कूल में बच्चे अपने सर में गन लेके वापस आते घर में, टीचर को भी वहां परेशान करते हैं, घर में आके माता पिता भी परेशानी रहते हैं। तो वहां प्रहलाद, उन्होंने कहा मैंने क्या सीखा है स्कूल में कि भगवान जो विष्णु है, कृष्ण है, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनका वंदनम करना, उनकी प्रार्थनाएं आदि करना। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि मैंने ये चीजें सीखी हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रद्युम्न मिश्र को कहते हैं कि मेरा भी इतने सालों से इच्छा नहीं हुई कृष्ण के बारे में सुनने की, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके अंदर भगवान के बारे में सुनने की इच्छा जागृत हुई है, इसी कारण से आप क्या हो, सबसे बड़े भाग्यवान व्यक्ति हो। तो वो जो स्त्री थी, प्रभुपाद को पूछा कि मैं पढ़ना चाहती हूं, कौन सी भगवद गीता पढ़नी चाहिए? तो प्रभुपाद ने कहा, अभी तो उस समय अमेरिका में 700 भगवद गीता के अलग अलग संस्करण उपलब्ध थे। तो प्रभुपाद ने कहा मुझे नहीं लगता कि कोई अधिकृत भगवद गीता का अनुवाद उपलब्ध है, हाँ, बहुत मुश्किल से, क्योंकि भगवत गीता का रिजल्ट क्या है, पढ़ने के बाद क्या हो जाना चाहिए हमें? अर्जुन कहते ना भगवत गीता के इन्हीं श्लोकों में, गीता है तो 558 पेज नंबर, श्लोक संख्या 73। तो अर्जुन ने पूरी भगवत गीता सुनी और सुनने के बाद भगवान ने उनको फोर्स नहीं किया, भगवान ने नहीं कहा कि अर्जुना जो मैं कह रहा हूं ना वही करो, नहीं तो देखो तुम्हारे साथ कुछ और हो सकता है, नहीं। भगवान जीव के पास एक छोटी सी स्वतंत्रता है जिसके कारण हम भगवान से क्या है, अलग है। तो हम, हमारे पास एक ही स्वतंत्रता है, क्या स्वतंत्रता है, इच्छा कर सकते हो, इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। जीव के पास एक ही स्वतंत्रता है, वो केवल अपनी इच्छा वो कर सकता है, लेकिन इच्छा की पूर्ति होगी या नहीं होगी उसके हाथ में नहीं है। हम अपने जीवन में बचपन से लेकर मृत्यु तक कितनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, स्वतंत्र स्वतंत्र इच्छाएं हैं हमारे हृदय में, पूरे दिन में शास्त्र कहते 30,000 डिजायर्स एक व्यक्ति के हृदय में आती है, 30,000 इच्छाएं हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी इतनी इच्छाएं। हम सुबह रात को सोते हैं, सपने में भी इतनी सारी इच्छाएं होती हैं, जब जगते तो भी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती हैं। तो इस प्रकार से हम केवल इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा अर्जुन मैंने आपको भगवत गीता सुनाई यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जैसी इच्छा है ना वैसे करो। तो अर्जुन ने पूरा भगवत गीता सुना, भगवत गीता सुना तो उसका रिजल्ट क्या, अर्जुन ने बोला क्या परिवर्तन आ गया मुझे? तो अर्जुन कहता है इस श्लोक में 73 चैप्टर का, अर्जुन उवाच न समोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। वो कहते नस्त मोह स्मृतिर लब्ध्वा, स्मृति मतलब याददाश्त, कहते ना अभी मुझे स्मरण हो आया, अरे भूल गया था मैं, अभी याद आ गया। तो अर्जुन कहते हैं, वो कहते हैं नस्त मोह, एक भगवत गीता ये नॉलेज, इस शिक्षा को सुनने मात्र से क्या हो गया, मेरा मोह
नष्ट हो गया।
इसलिए सुनना बहुत पावरफुल है। भगवत भक्ति ये श्रवणम पर आधारित है। भगवत भक्ति रूपी महल हम अपने जीवन में खड़ा कर रहे हैं तो उसका फाउंडेशन क्या है? हियरिंग है। हाँ, ईयर का ईयरिंग क्या है? हियरिंग है कि नहीं? कानों का कुंडल क्या है? श्रवणम है। तो ये जो श्रवणम अर्जुन ने किया तो उसका मोह नष्ट हो गया। हाँ, लेकिन हमारे साथ भी होता है। मैंने पहले भी ये स्टोरी बताई थी, एक बड़े से प्रवक्ता जब प्रवचन दे रहे थे, बड़ी बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे थे, अलंकारिक शब्द यूज कर रहे थे और कई लोग वाह वाह प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन उसमें से एक माता जी क्या हो रही थी? रो रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था प्रवचन का, वो जो वक्ता थे उसकी ओर देख देख के वो अपना जो आंसू है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अनकंट्रोल। तो वक्ता को लगा देखो मेरा प्रभाव, मेरे वाणी का क्या प्रभाव है कि लोग कथा सुनते सुनते भी रोने लगते हैं। अभी जो प्रवचन के बाद जो समय आया तो महाशय अपने आसन से नीचे आए, तो लोग उनको मिलने आए, तो माताजी भी रोते रोते आए। अब इनको लगा कि कुछ स्पेशल प्रशंसा सुनने को मिलेगी, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड का नेचर ही है, हम सब लोग क्या चाहते हैं? एप्रिशिएशन, प्रशंसा चाहते हैं, है कि नहीं? वो हमारा फोर्स है आगे बढ़ने का, क्या है, ईंधन है एक प्रकार से। तो जो लीडर होता है वो हमेशा अप्रिशिएट करता है छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि उससे जो अनुयायी है, फॉलोवर्स है, उनको एक ईंधन मिलता है, तो आगे बढ़ते रहते हैं सेवाओं में। तो वो जब आए तो उन्होंने कहा आप तो इतनी रो रही हो, बताइए क्या रोने का कारण क्या है? उन्होंने कहा क्योंकि जब आप प्रवचन दे रहे थे तो आपकी जो छोटी सी लंबी दाढ़ी है ना वो हिल रही थी बहुत, और कल मेरी बकरी भी गुम हो गई है और बकरी की दाढ़ी भी क्या थी? वैसी थी। जैसी जैसी आपकी दाढ़ी हिल रही थी ऐसे तो मुझे किसकी याद आ रही थी? बकरी की याद आ रही थी, और जिसके कारण मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मेरे आंसुओं की धारा निरवर बहने लगी। तो ये मोह नष्ट होना चाहिए, मोह क्या हो रहा है इसका? बढ़ रहा है। तो इसलिए शास्त्र कहते सुनना है तो अधिकृत व्यक्ति के द्वारा भगवत गीता को सुनना होगा, क्योंकि भगवत गीता ये लॉक्ड है। क्या है? लॉक किया हुआ ग्रंथ है, लेकिन इसका ओपनर कौन है? डिवोटी है। जैसे ना आजकल तो कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में प्लास्टिक का डो आ गया, ढक्कन आ गया, पहले तो ओपनर चाहिए होता आपको ना उठाने के लिए, तो खोल सकते हो फिर पी सकते हो। तो उसी प्रकार से ये जो शास्त्र है ये क्लोज्ड है, और उसकी चाबी ओपनर कौन है? भगवान के भक्त है, डिवोटी है। इसी कारण से भगवान ने अर्जुन के इनको कहा, अर्जुन मैं तुम्हें भगवत गीता इसलिए बोल रहा हूं तुम में दो चीजें हैं, भक्तो असी और सखा असी, टू असीज हैं। आप भक्त हो और मेरे सखा हो। इसके साथ साथ अर्जुन में एक विशेष गुण भी था कि अर्जुन केवल सखा ही नहीं समझ रहे थे बल्कि कृष्ण को हमेशा परम ब्रह्म, परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में अपने जीवन में समझ रहे थे, या उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो जब हम श्रवण करते हैं तो अधिकृत व्यक्ति के द्वारा सुनना चाहिए, अधिकृत माध्यम से हमें सुनना चाहिए। जहां तहा आजकल तो लोग कहते कोई मंदिर जाने की थोड़ी आवश्यकता है, मंदिर जो कथा तो हमारे घर में आ गई है। घर में क्या है? टेलीविजन है, और टेलीविजन में एक के बाद कई सारे प्रवक्ता बोलते रहते हैं। कथा बिजनेस बना लिया है, अपनी उपजीविका कमाने का क्या है? साधन है। तो ये सब जब हम सुनते हैं, जिन लोगों ने धंधा बना लिया है उनके माध्यम से, जो अधिकृत नहीं है, परंपरा में नहीं है, तो उन व्यक्तियों से सुनते हैं तो कभी भी हमारा मोह नष्ट नहीं होगा, कान को बड़ा अच्छा लगेगा, अरे क्या क्या कथाएं हैं, अमेजिंग, कृष्ण का वर्णन बड़ा, बाल लीलाओं का वर्णन अच्छा हो रहा है, तो वो सब अच्छा तो लगेगा लेकिन परिवर्तन नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, गीता में भी कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योग नष्ट परंतप। भगवान कहते हैं अर्जुन ये जो ज्ञान है वो परंपरा से राज ऋषियों ने प्राप्त किया था, लेकिन कालांतर में परंपरा विनष्ट हो गई, इसी कारण से ये ज्ञान की स्थापना में पुनः तुम्हारे से कर रहा हूं। तो ये बहुत आवश्यक है कि सुनना है तो अधिकृत सोर्स से। तो भगवत गीता को समझना है तो अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से या भक्तों के द्वारा समझना चाहिए, तभी भगवत गीता का ये जो सार है, भगवत गीता की शिक्षा है, वो हम अपने हृदय में धारण कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने ये जो नॉलेज भगवत गीता का यथार्थ प्रस्तुत किया है, इसी कारण से अर्जुन कहते हैं नस्त मोह स्मृति लब्ध्वा, मुझे क्या प्राप्त हो गई है, स्मृति प्राप्त हो गई है। क्या स्मृति, एक की स्मृति, हम भूल गए हैं कि मैं क्या कौन हूं, यह हम भूल गए हैं। अभी हम सोच रहे हैं मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बालक हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं नौकर हूं, मैं चाकर हूं, जो मर्जी हम ये सारी उपाधियां डेजिग्नेशंस अपने साथ लगाई है, क्यों, क्योंकि हम शरीर में हैं, लेकिन वास्तव में हम ये सब कुछ नहीं है, हम एक शुद्ध भगवान के सेवक है। और उस चीज को समझने के लिए भगवत गीता का अध्ययन है, ये चीज अंडरस्टैंड करें, अनुभव करें कि कृष्ण परम भगवान है, वो प्रभु है और मैं उनका सेवक हूं, एक दास हूं, निम्न नगण्य दास, तुच्छ सेवक हूं। इस दो चीजों को अनुभव करना, जानना ही, रियलाइज करना ही आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार ये नहीं है कि आंखें बंद करो और आत्मा का आपको दर्शन होगा, आत्म साक्षात्कार यही है कि आपको ये दो चीजों का भली भांति नॉलेज होगा और आप अनुभव करोगे अपने हृदय में कि कृष्णा आप परम प्रभु हो और मैं क्या हूं, आपका एक तुच्छ सेवक हूं। और ये जब अनुभव करता है तो वो जो व्यक्ति है भगवान की सेवा से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं रहता, और भगवान का स्मरण यह क्षण से भी उसके हृदय से शुद्ध नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मेरे जीवन में बचपन से ऐसा एक क्षण भी नहीं है कि मैं कृष्ण को भूला हूं, कदापि नहीं, ऐसा एक क्षण भी नहीं मेरे जीवन में आया कि जब मैं कृष्ण को भूल गया। तो ये आत्म साक्षात्कार व्यक्ति का परिभाषा है या व्यक्ति का लक्षण है। तो भगवान यहां कहते हैं, अर्जुन कहते हैं नस्त मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसादात् मया चितः। और ये किसकी कृपा से संभव हो सकता है, केवल भगवान की कृपा से। हाँ, ये मोह नष्ट होना और ये स्मृति भगवत साक्षात्कार होना केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। त्वत् प्रसादात् मया चितः। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि मैं क्या करूंगा फिर, कि स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अभी मेरे जितने भी संशय थे वो पूर्ण रूपेण खत्म हो गए हैं, और मैं क्या करूंगा, जो आपने कहा है वही मैं करूंगा, बस। इसी को कहते हैं हम वास्तव में धर्म का अनुपालन करना। धर्म क्या है, धर्मस्तु साक्षात भगवान प्रणीतम। धर्म की स्थापना कोई और नहीं कर सकता भगवान के अलावा। तो जो धर्म क्या है कि जो भगवान ने कहा वह धर्म है, धर्म की शिक्षा है, और उस पथ पर चलना जो व्यक्ति चलता है वो वास्तव में धार्मिक है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, तुम ये चीज करो। हाँ, क्या करो? मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। नवे अध्याय के आखिरी श्लोक में तुम मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो इत्यादि। तो भगवान कहते हैं कि आप मेरा भक्त बनो, तो अर्जुन उनके आदेशों पर चलने के लिए तत्पर होता है। इसलिए श्लोक के आखिरी में वो कहते हैं करिषे वचनम तव। ये वास्तव में शरणागत व्यक्ति का एक लक्षण है। तो अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, जो आप कह रहे हो वो करने के लिए मैं तैयार हूं। हाँ, तो इस प्रकार से हाँ एक भक्त का मतलब ही है, गीता पढ़ने का मतलब ही है कि भगवान जो कह रहे हैं उस पर 100% विश्वास होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि गीता के एक श्लोक पर भी आप पूर्ण रूपेण दृढ़ विश्वास हो जाए उतना ही काफी है भगवान के धाम वापस जाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। इसलिए भगवान ने तो कई सारी शिक्षाएं दी, और भगवत गीता का अंत होते होते भगवान ने कहा हाँ कि क्या महत्वपूर्ण है, ये इदम परमम गुह्यम गुह्य गुह्यतर गुह्यतम आदि क्या भगवान भगवत गीता में देते हैं। मल भक्तेश्व अभिधाषते। तो ये जो भगवत गीता का नॉलेज जो दूसरों को प्रदान करता है तो उसको एक चीज प्राप्त होती है। क्या चीज प्राप्त होती है? भगवान की शुद्ध भक्ति, भक्तिमय परम तत्व। हाँ, भगवान कहते हैं कि मेरी जो शुद्ध भक्ति है वो प्राप्त होती है यदि कोई व्यक्ति इस भगवत ज्ञान को दूसरों को देने का प्रयास करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि ते है न मनुष्य जन्म जात, जन्म सार्थक करी कर्म पर उपकार। जिस व्यक्ति ने भी भारत भूमि में जन्म लिया है उस व्यक्ति ने अपना जन्म सार्थक करने के साथ ही साथ क्या करना चाहिए? दूसरों पर परोपकार करना चाहिए। भौतिक जगत में तो परोपकार की भावना ही खत्म हो गई है। हाँ, तो जो भक्तों के 26 गुण हैं, एक भक्त के अंदर 26 क्वालिटीज होती है, 26 में एक गुण क्या है? सर्व उपकार कहा कि भक्त का नेचर होता है कि वो जीवों पर उपकार रखता है, उपकार करता है, दया प्रदर्शित करता है। इसलिए जो साधु है वो केवल ड्रेस से नहीं होता बल्कि उसके मनोवृत्ति से होता है। साधु का मतलब जिसकी मनोवृत्ति कॉन्शियसनेस साधु की है वो वास्तव में साधु है। ड्रेस या जो साधु का स्टाइल है उससे कोई साधु नहीं बन सकता यदि उसके पास वो प्रॉपर मनोवृत्ति नहीं है। इसलिए जब देवभूति माता ने अपने पुत्र कपिल देव से पूछा मुझे बताओ साधु कौन है, तो वो क्या कहती है देव कपिल देव, उन्होंने नहीं बोला कि साधु मतलब जिसकी लंबी दाढ़ी है, लंबी शिखा है, लाल वस्त्र पहने हैं वो साधु है, नहीं, इसका तो वर्णन ही नहीं किया। साधु का मतलब ही कपिल देव ने बताया भागवतम में, उन्होंने कहा तितिक्ष्वा, पहला उसका गुण क्या है? तितिक्ष्वा, तितिक्ष्वा मीन्स सहनशील। तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवा साधु भूषणा। वो कहते हैं कि साधु का मतलब है जो उनके अंदर एक गुण भरे पड़े होने चाहिए। हाँ, सिर्फ उन लक्षणों से साधु को पहचाना जाता है। तो कहते क्या लक्षण है, तो कपिल देव कहते हैं तितिक्ष्वा सहनशीलता पहला, और दूसरा क्या है कारुणिका, वो बहुत अधिक करुणामय होता है, दयावान होता है। हाँ, क्योंकि भगवान के अंदर ये महत्वपूर्ण गुण है। इसलिए हम जब कृष्ण को प्रणाम करते तो क्या बोलते हैं, हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तो तो भगवान तो करुणा के सागर है, तो वही जो करुणा की भावना है वो एक भक्त के अंदर होती है। इसलिए वो कहते साधु मेंस जिसके अंदर ये करुणा का भाव हो। तो भगवान इस श्लोक में कहते गीता के अंत में कि मेरा प्रिय बनना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे हम भी किसी का प्रिय बनना चाहते हैं तो हम ढूंढते कि उस व्यक्ति को क्या चीज सबसे अच्छी लगती है, वो मैं करूंगा तो उसका प्रिय बन जाऊंगा। तो भगवद गीता का बोल, भगवद गीता बोलने के आखिरी उपरांत में भगवान ने कहा मेरा प्रिय बनना है तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, क्या? कि ये जो उपदेश है ये दूसरों तक पहुंचाओ। हाँ, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको भी आप मिलते हो उसको कृष्ण का उपदेश दो। और कृष्ण का उपदेश क्या है? दो है, एक है भगवद गीता और दूसरा है श्रीमद् भागवतम। तो भगवान का उपदेश हम दूसरों तक पहुंचाए। कोई कह सकते कि मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है, मैं तो भगवद गीता का ज्ञान नहीं रखता हूं, तो लेकिन नहीं, केवल ये जो भगवद गीता के ग्रंथ है वो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो कृष्ण के हम प्रिय बन जाते हैं। इसी से कृष्ण कहते हैं कि केवल दूसरों को ये ज्ञान वितरण करने से क्या होगा, इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है क्या है? शुद्ध भक्ति। इस संसार में सब कुछ हम पैसे से खरीद सकते हैं लेकिन एक चीज नहीं आप ले सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, वो केवल भगवान और उनके भक्तों की कृपा से ही संभव है, और वो है भगवान के प्रति प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति की भावना। हाँ, तो वो केवल आती है जब हम ये कार्य करते, भक्ति मय परा कृत्वा, मेरी भक्ति प्राप्त होगी भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं ये जो कार्य करता है वो व्यक्ति मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है। नच तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियतमः, भगवान कहते हैं उससे अधिक प्रिय व्यक्ति मुझे इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो पहले तो हम प्रयास करें कि भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें, और साथ ही साथ क्या करें, दूसरों तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास करें। जब हम ये करते हैं, केवल भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमारे अंदर सारी योग्यताएं आ जाती हैं। प्रभुपाद उनके पास, उनके गुरु ने कहा कि आप अंग्रेजी बहुत अच्छा जानते हो, नव युवक हो, ले जाओ इस संदेश को विदेशों में। तो वो सोचने लगे मेरे पास तो क्या योग्यता है, तो लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, भगवान के एक शुद्ध भक्त ने मुझे कहा है मुझे करना होगा। तो प्रभुपाद अपने कॉलेज डेज में उनको उनके आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला था, जब उनकी आयु लगभग 20-22 साल की होगी, लेकिन जब वो 70 साल के हुए हैं तब तक वो सोच रहे थे कैसे करूं मैं उस आदेशों का पालन। तो फिर फाइनली उनको मौका मिलता है कहां जाने का, अमेरिका जाने का। 40 रुपए के साथ अमेरिका पहुंचते हैं और वहां तो सब कुछ कुछ है, वो सोच नहीं सकते यहां कौन सुनेगा भगवद गीता, कौन भागवत को सुनने की इच्छा करेगा। लेकिन कहा है मुझे, क्योंकि भगवान के भक्तों या जो आदेश है गुरु के, उसके साथ शक्ति और सामर्थ्य भी हमें प्राप्त होता है, सारी योग्यताएं उस व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं। तो प्रभुपाद पहुंचे और उन्होंने गंभीरता से सिंसियरली प्रयास किया, और प्रयास किया तो क्या हुआ, इतना विशाल अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ उत्पन्न हो गया, जिसमें हजारों हजारों लाखों लोग पूरे वर्ल्ड में भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं, कृष्ण प्रसादम ग्रहण कर रहे हैं, सुखमय और शांतिमय जीवन अपना यापन कर रहे हैं। देखो, एक व्यक्ति ने इस इंस्ट्रक्शंस को गंभीरता से लिया। चैतन्य महाप्रभु के समय में भी एक उनके भक्त थे जिनका नाम था सारंग ठाकुर। ये सारंग ठाकुर बहुत विनम्र भक्त थे और सदैव भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करते थे और कई प्रकार की सेवाओं में लगे रहते थे।
चैतन्य महाप्रभु ने कहा सारा तुम्हें तो अभी शिष्य स्वीकार करने चाहिए, प्रचार करो। तो उन्होंने कहा हे प्रभु, हे चैतन्य देव, मुझ में तो कोई योग्यता नहीं है, हाँ मैं कैसे, मेरे भजन में बाधा होगी। हाँ तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं तुम करो। कई बार महाप्रभु बोलते थे, एक दिन उन्होंने कहा हाँ कल मैं निकलूंगा बाहर, जो भी व्यक्ति सबसे पहले मुझे मिलेगा उसको मैं दीक्षा दूंगा, अपना शिष्य बनाऊंगा, प्रचार करूंगा। ये सारंग ठाकुर जब नवद्वीप में निवास कर रहे थे बंगाल में, सुबह उठे और निकले तो वहां तो सबसे पहले सुबह उठकर लोग गंगा स्नान करते हैं, हम तो बाथरूम में जाते हैं, वहां लोग कहां जाते हैं, वाटर टैंक, इतना बड़ा वाटर टैंक है, नदी गंगा नदी, वहां जाते हैं उसमें स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। तो उन्होंने ये व्रत लिया था कि जो भी सबसे पहले मिलेगा उसको कृष्ण नाम दूंगा। तो जैसे पहुंचे तो देखा जल में पांव रखते थे, डेड बॉडी उनके पांव में लगती है। उन्होंने कहा ये क्या, तुरंत वो कहते अरे उठ और क्या बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे इन्होंने बोला वो जो मृत देह था वो उठ के खड़ा हो गया उनके सामने। पावर है भक्तों, भगवान के आदेशों का पालन करने से क्या है, सामर्थ्य आ जाता है, एक मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित करने का सामर्थ्य। प्रभुपाद अमेरिका गए तो वहां सारे म्लेच्छ यवन निम्न लोग जो वास्तव में मरे हुए मरा हुआ कल्चर है, लेकिन वो भी अभी महान वैष्णव बन गए। वैसे सारंग ठाकुर ने जब ये उच्चारित किया तो वो उठ के खड़ा हो गया और उनका एक प्रकार से शिष्य बन गया और उनको हरि नाम दिया। तो इसलिए उस व्यक्ति का नाम क्या पड़ा, सारंग मुरारी, उनके फॉलोवर वो बने। तो इस प्रकार से यदि हमारे पास योग्यता है नहीं है लेकिन हम सिंसियरली प्रयास करते हैं तो कृष्ण सारी योग्यताएं हमारे हृदय में डाल देते हैं और हमें भी नहीं पता चलता कि हम इतना सारा मिरेकल कर सकते हैं। तो इसलिए ये भगवान का प्रिय बनने का सबसे सरल सर्वोत्तम उपाय है कि जो भी बने उसको कृष्ण के बारे में बोले, उसको प्रोग्राम में इन्वाइट करें, उसको भगवत गीता पकड़ाए। क्योंकि जितना आप कृष्ण दोगे, भक्ति ने ठाकुर को पूछा कृष्ण प्राप्ति का शॉर्टकट क्या है, उन्होंने कहा जितना आप कृष्ण दूसरों को दोगे उतना ही कृष्ण आपके जीवन में आ जाएंगे, यही शॉर्टकट है। तो चाहे हम जहां मर्जी हो, हम हर समय यही मनोवृत्ति में रहे कि कैसे दूसरों को ये जो कृष्ण भावना है वो प्रदान करो, कैसे कृष्ण को दूसरों को दो। तो इस भावना से रहते हैं तो हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। इस संसार में हम किसी ना किसी के प्रिय बनने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, बचपन से प्रिय बनना चाहते हैं लेकिन हमेशा उल्टा ही होता है। हाँ तो प्रिय बनना ही है कृष्ण का बनो। हाँ तो कृष्ण का प्रिय बनने का फॉर्मूला भगवान ने बता दिया है भगवत गीता के इन आखिरी श्लोकों में। तो इस प्रकार से हम इससे यही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि वो व्यक्ति वास्तव में भाग्यवान है जो भगवत गीता को पढ़ने की इच्छा जागृत हो गई है, और वो महान भाग्यवान है जिसने पूरी भगवत गीता कम से कम एक बार पढ़ ली है। तो हमें दोनों कार्य करना है, भगवत गीता को पढ़ना भी अच्छी तरह से और दूसरों तक पहुंचाना भी है। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा उस स्त्री को कि मुझे नहीं लगता कि भगवत गीता का अधिकृत एडिशन पे अवेलेबल है, क्योंकि भगवत गीता सुनने से रिजल्ट क्या है, भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। तो इतनी सारी गीताएं आ गई मार्केट में है लेकिन कोई भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है, उनकी सेवा में नियुक्त नहीं है, शरण नहीं ग्रहण कर रहा है, हाँ तो फिर वो उचित नहीं है। तो प्रभुपाद ने जब ये ट्रांसलेशन दिया भगवत गीता का इंग्लिश में, भगवत गीता एज इट इज, तो सारे विश्व में एक सुनामी जैसी बाढ़ आ गई कि लोग भगवान के संदेश को समझने लगे और भगवान के शरणागत हो गए। इसलिए प्रभुपाद ने एक एनालॉजी देते थे, वो कहते थे कि कई सारे आम के पेड़ हैं, हमें पता करना है कि सबसे मीठा जो अच्छा मैंगो ट्री कौन सा है, तो उसके फल से पता कर सकते हो। जिसका फल बहुत स्वीट है वो आम का जो वृक्ष है वो बहुत अच्छा है। तो उसी प्रकार से जिस भगवद गीता के द्वारा हजारों हजारों लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया है, भगवान का नाम जिह्वा पर उच्चारण कर रहे हैं, भगवद गीता के शिक्षा के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं, वो वास्तव में भगवद गीता का अनुवाद या जो प्रस्तुति है वो क्या है, सर्वोच्च और सर्वोत्तम है। तो इसलिए प्रभुपाद ने भगवद गीता के नीचे नाम भी दिया, as it is, ये यथारूप। तो इस प्रकार से हम हमारे जीवन में ये दो चीजें लागू कर सकते हैं, एक तो भगवद गीता को हम पढ़े भी बारंबार, और दूसरा जिसको भी मिले भगवान के बारे में बताएं। सिंपल दो चीजें हम करेंगे तो भगवान इसमें गारंटी देते हैं। उस तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं वो व्यक्ति मेरे धाम वापस आएगा, और दूसरी चीज उसको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या फिर समीक्षा है तो बोल सकते हैं, अन्यथा हम यहां विराम लेते हैं। हरे कृष्णा।
समय भी है तो हम चाहे तो अपने दो तीन स्टोरी सुना सकते हैं भगवद गीता के बारे में,
और डिस्ट्रीब्यूशन
लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 10-10 मिनट के लिए।
हरे कृष्णा। प्रभु जी कह रहे हैं पुस्तक वितरण की कथाएं कुछ सुना सकते हैं। हाँ, तो कई बार अभी तो हम जाते हैं लोगों को भगवद गीता देने के लिए, तो सब लोग क्या कहते हैं हमारे पास, हाँ, और हम भी कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं देनी चाहिए, अरे सबके पास हो गई, अब कितना बांटेंगे, हाँ सबने रख ली। और फिर ये भी लगता है हमारा मन इतना पागल है कि अरे कौन पढ़ेगा, क्यों खुद नहीं पढ़ता ना, इसलिए हम क्या कहते हैं कौन पढ़ेगा इसको। जब आप खुद इसका वैल्यू जानोगे तब आप सोचोगे नहीं, उस व्यक्ति के जीवन में भी आवश्यक है। अभी खुद ही हम वैल्यू से अवगत नहीं है तो आप दूसरे के जीवन में भी नहीं देख पाते। तो कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि भगवद गीता क्या काम करेगी, तो कई सारे भक्त हैं जो इस पूरे महीने में भगवद गीता का वितरण पूरे विश्व में कर रहे हैं। बल्कि हम यहाँ भाग्यशाली हैं कि ग्रंथों का वितरण श्रील प्रभुपाद ने अपने हाथों से दिल्ली में किया था, और दूसरा यहाँ वेदर बहुत अच्छा है। रशिया में अभी जो हमारे भक्त वितरण कर रहे हैं और माइनस कई डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी पूरे दिन वहां के प्रभु जी माता जी रोड पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं रशिया में, और लोगों को भगवद गीता का वितरण कर रहे हैं। एक एक फ्रांस में एक श्री थे, एक माता जी डिवोटी, वो रोज भगवद गीता वितरण करने के लिए बाहर निकलती थी रोज, हाँ एक भी दिन खाली नहीं, क्योंकि कृष्ण की सेवा में कोई छुट्टी नहीं है। क्योंकि हम अपने ऑफिस में हमेशा संडे का इंतजार करते हैं, करते कि नहीं, संडे कब आएगा, छुट्टी कब आएगी, लेकिन भगवान की सेवा में कभी हॉलीडेज नहीं है, सारे दिन होलीडे है। तो वो जो श्री थी माता जी, वो बुक कई भरा हुआ बैग लेकर निकल गई, फ्रांस में पेरिस में ट्रेन में जा रही थी पुस्तक वितरण करते करते। उसके पास कृष्णा पुस्तक थी, अप्रोच बुक्स थी, तो कई लोगों को अप्रोच किया। एक व्यक्ति, बड़ा सा हट्टा कट्टा व्यक्ति वहां से आया अचानक उसके सामने, उसने कहा हरे कृष्णा। क्या बोला उसने, माता जी ने क्या बोला, हरे कृष्णा। तो भक्त हमेशा हरे कृष्णा बोलते हैं बात शुरू करनी है, तो उन्होंने कहा ये कृष्णा बुक आपके लिए। वो व्यक्ति इतना गुस्सा हो गया, उसने उसकी पिटाई करना शुरू कर दी उस माता जी की, और कृष्णा बुक ले भी लिया हाथ में, उसको ऐसे जमीन में डाला और उसके ऊपर अपने पांव से मारने लगा बूट जो शूज उन्होंने पहना था और उस माता जी का ब्लड भी निकल रहा था। वो उसके सामने कृष्ण को प्रार्थना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कृष्णा ये व्यक्ति जानता नहीं कि ये क्या कर रहा है, आप इसको क्षमा करो, क्या करो क्षमा करो। इतना बड़ा हृदय उस लेडी का था, माता जी डिवोटी। तो वो निकल जाती है, आगे स्टेशन आता है तो उतरती है। ये व्यक्ति उस बुक को उठाता है, फट गया था उसने अपने, उसको बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। ये भी अगले स्टेशन में उतरा, घर पहुंचा और बुक हाथ में लेकर, अपनी पत्नी वहां बैठी थी डाइनिंग टेबल पर, और ऐसे फेंका और उसने कहा देखो ना मैं आज बहुत बड़ा कार्य करके आया हूं। कई बार होता है ना, पति दिन भर कुछ करता है तो घर में आके शेयर करना चाहता है और शेयर बनता है। हाँ हाँ, वो बताना चाहता है कि मैंने क्या क्या किया। तो इसने भी कहा कि मैंने आज देखो ये चीज करके आया हूं, और ऐसे बुक फेंका उसके सामने उस डाइनिंग टेबल पर, जो कृष्ण बुक कई पेज ऐसे पट गए थे और थोड़ा बहुत टूट फूट गया था, और फिर वो बुक उधर ही पड़ा था डाइनिंग टेबल पर। घर में उसकी बेटी और एक बेटा, ये चार लोग थे, इन्होंने भोजन वगैरह किया और ये चले गए। तो उनकी नौकरानी वहां आ गई, नौकरानी अपना साफ सफाई कुछ कार्य कर रही थी, उसने देखा डाइनिंग टेबल पर एक किताब पड़ी है। अरे किताब दिखने में तो अच्छी लग रही है और फटी हुई है। उस नौकरानी ने क्या किया, उसको ग्लू ले आई, उसने सोचा बच्चों ने फाड़ दिया होगा, उसने पूरा चिपकाया, साफ वगैरह किया और जाकर कहां रखा वो किताब, कृष्णा को प्रभुपाद का कहा उनके घर में ही बुक शेल्फ में जाके रखा। तब ये इस व्यक्ति पूरी तरह से नास्तिक प्रवृत्ति का था, तो इसका रिएक्शन ये हुआ कि एक साल में उसकी पत्नी को जानलेवा बीमारी हुई जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बेटी किसी के साथ भाग गई और अभी अकेला रह गया घर में। उसने सोचा, और दो चार साल बीत गए, इसने सोचा कि अभी तो मुझे आत्महत्या करनी चाहिए, क्योंकि हम दुखों से छुट्टी चाहते हैं। तो जब बहुत परेशान रहते हैं तो व्यक्ति को एक ही सॉल्यूशन नजर आता है, क्या, सुसाइड करना। तो उसने सोचा आत्महत्या करने से पहले कुछ धार्मिक किताब पढ़नी चाहिए, बाइबल पढ़ लेता, कुछ अच्छा काम करके मरना बहुत अच्छा है। कुछ लोग होते ना बहुत पाप करते रहते हैं, कभी कभी उनको ये इच्छा होती है कुछ थोड़ा सा अच्छा काम भी कर लेता हूँ, तो कभी मंदिर जाएंगे, किसी को दान दे देंगे, कुछ परोपकार करेंगे। तो व्यक्ति ने गया अपने बुकशेल्फ में, अभी वो नास्तिक था, घर में बाइबल भी नहीं रखी थी उसने। हाँ, तो फिर उसको ये बुक हाथ में लगी, कौन सी बुक, कृष्णा बुक। वो भूल गया था कि वो लेके आया था, या जो कृष्णा बुक हाथ में लगी उसने खोला। उसी रात को पूरी रात एक सेकंड के लिए भी आग उसकी झपकी नहीं आई, पढ़ते रहा। सुबह तक पूरा हृदय ऐसे परिवर्तन हो गया। उसने देखा, उसने विशेष रूप से वो पढ़ा जो कंस और वसुदेव के बीच में जो संवाद है, आत्मा का वर्णन और मृत्यु आदि का वर्णन है, हम कृष्ण बुक में पढ़ेंगे। तो उसको हृदय परिवर्तन हो गया और उसने सुबह ही देखा एड्रेस, इस्कॉन पैरिस का टेम्पल कहाँ है। ढूंढते ढूंढते पहुंचा मंदिर, उसने कहा आज से मुझे फुल टाइम डिवोटी बनना है, आपके मंदिर में रख लो मुझे, यहाँ कुछ सेवा वगैरह दो। तो वहां के जो मंदिर के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा, सोचा अरे मंदिर तो वैसे ही खाली रहता है, हम तो चाहते मंदिर में रहने वाले भक्त बहुत बड़े। उन्होंने कहा आप शुरू कर सकते हो, यहाँ ही रह सकते हो। तो वो बहुत सीरियस हो गया व्यक्ति, जप करने लगा, सेवा करने लगा, और उसको सेवा क्या मिले, पुस्तकों का गोडाउन का इंचार्ज बना। हाँ, और फिर कुछ महीने बीते हैं तो वहां के कई सारे टेम्पल, जैसे यहाँ NCR में टेम्पल्स हैं, तो वहां कई सारे टेम्पल्स का एक महामिलन था जिसमें अलग अलग मंदिरों के पुस्तक वितरण करने वाले सारे भक्त इकट्ठा हो गए थे। तो ये व्यक्ति भी वहां गया और वो माता जी भी उसे नजर आई, जिसको इसने क्या किया था, मारा पीटा था, और वो दिखाई दे, ये गया उसके सामने, जाके दंडवत प्रणाम चरणों में उसके कहा कि आपने मेरे जीवन को क्या कर दिया है, बदल दिया है।
तो अभी भी वो भक्त उस पैरिस के टेंपल में सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भक्त है वो एक प्रकार से कृष्ण की सेवा के लिए कितना खतरा मोल ले रहे हैं और वो प्रयास कर रहे हैं इन ग्रंथों को दूसरों तक पहुंचाने का। और एक व्यक्ति का जीवन, एक व्यक्ति भक्त बनता है आपके प्रयास से, तो आप कृष्ण के सबसे अधिक प्रिय बनते हो। कृष्ण हमेशा इस प्रयास में रहते कि संसार में जो जीव भोग की इच्छा से बहुत कष्ट प्राप्त कर रहे हैं वो मेरे धाम वैकुंठ वापस आ जाए मृत्यु के बाद। ये भगवान की अंतरंग इच्छा है, इसलिए गीता में उन्होंने बोला फाइनली गीता एंड करते करते। तो इस प्रकार से आप देखते हैं ऐसे हजारों उदाहरण है कि जो इस प्रकार से प्रचार कार्यों से हजारों हजारों जो भक्त विदेशों में बल रहे हैं। एक व्यक्ति था जो ये हरे कृष्ण का रोड में कीर्तन करते ना, हम सारे भक्तों गाते नाचते बजाते हैं तो लोगों को बड़ा आनंद आता है। कई लोग तो मजाक करते रहते हैं और वो कुछ अलग स्टाइल से वो हरे कृष्ण हरे रामा का मजाक उड़ाते हुए गाते रहते हैं। जैसे हरे कृष्ण भक्त को देखेंगे दो चार लोग एक कोने में खड़े होकर कुछ ना मजाक से हरे कृष्ण हरे राम बोलते रहेंगे गाते रहेंगे, वो मंत्र भी याद नहीं रहता उनको या आता नहीं है। तो ऐसे ही विदेशों में एक स्थान में जब ऐसा कीर्तन हो रहा था तो एक व्यक्ति भक्तों का बड़ा मजाक उड़ाते रहता था और वो मजाक मजाक में क्या गाता रहता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये गाता रहता था अलग अलग ट्यून्स हो या फिर मजाक के मोड में। तो ये जब घर आया, घर आके डाइनिंग टेबल पर प्रसाद भोजन के लिए बैठा तो उस दिन भोजन लेट था, पत्नी लेके आ रही थी किचन से भोजन। तो इसने सोचा लेट है तो उसने प्लेट उठाई और चम्मच उठाया, बजाते रहा और क्या गाते रहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तभी उसका बच्चा छोटा था, वो बच्चा भी आ गया, पिता के सामने बैठ गया। बच्चे को बोला बेटा तुम भी गा लो। अभी उसको लगा तो चिढ़ आती है ना व्यक्ति थोड़ा सा मजाक करने में, घर भी जाए तो भी वो जाता नहीं है दिमाग से। तो बच्चे को भी बोला तुम भी गाते रहो, वो बच्चे ने भी अपना थाली और चम्मच उठाया, वो भी बजाते रहा और गाते रहा। तभी बच्चा छोटा था और अभी ये आदत हो गई उस फैमिली में, किचन से भोजन आता है कि नहीं तो बाप और बेटा वो अपना चम्मच और थाली लेके हरे कृष्ण, और उनको पता नहीं है किसी को ये हरे कृष्ण नाम क्या है, कौन है कृष्ण, इस्कॉन क्या है, कुछ भी पता नहीं। और वो बच्चा कई साल हो गए बड़ा हो गया तो किचन उनके डाइनिंग टेबल में भोजन से पहले हरे कृष्ण गाते रहते थे। एक दिन वो जो बच्चा है बड़ा हो गया थोड़ा और वो बाहर कहां जा रहा था तो उस समय उसने देखा लाल वस्त्र पहने हुए शिखा तिलक मृदंग करताल के साथ भक्तों के हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए रोड में नाचते गाते जा रहे हैं। और ये बच्चे की लोग, अरे इन लोगों को कैसे पता कि हम हमारे घर में भी गाते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के। तो बालक वो गया उनके पास, एक भक्त को पीछे से पकड़ा, कहा रुको। तो उन्होंने कहा ये आप लोगों को कैसे पता कि हम लोग भी ये तो गाते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो हमारा मूल मंत्र है, यही तो हम दिन भर यही करते रहते हैं। तो वो व्यक्ति को उस युवक था अभी वो उसको लेके मंदिर गए और उसके बाद उनका पूरा फैमिली क्या बना, भक्त बन गया। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है बहुत पावरफुल है, हजारों जीवों लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है। हाँ, क्योंकि भगवद गीता कोई हिंदू लोगों के लिए नहीं है, कोई समाज के लिए नहीं है, ये कोई त्याग नहीं है हिंदुओं के लिए। जिसके पास भी ये मनुष्य का शरीर है उसके लिए क्या है, भगवद गीता है। जो भी आत्मा है, आत्मज्ञान है भगवद गीता। इसलिए पूरे संसार में चाहे वो रशियन हो अमेरिकन हो या कोई भी व्यक्ति हो वो भक्त बनने की योग्यता रखता है।
यदि उसको प्रभुपाद के ग्रंथों का वाणी संग यदि प्राप्त होता है तो व्यक्ति का जीवन परिवर्तन होकर वो कृष्ण की सेवा में लग सकता है। तो ऐसे हजारों स्टोरीज हैं जिनको आने वाले दिनों में हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ। हरे कृष्णा। ग्रंथराश्रम भगवद गीता के समवेत गौर भक्त वृंद के निताय गौर प्रेमानंदे।